प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन।
कार्यक्रम सत्यवचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
तुम ना थे इस जीवन में, जीवन मेरा कैसा होता, निर्बिन नदिया बिन फूल बगिया, जीवन मेरा ऐसा होता तू ना आते। इसी संसार के माया मोह में तृप्ति मिली ना आनंद पाया, इसी संसार के माया मोह में तृप्ति मिली ना आनंद पाया, तुमको पाके सब कुछ पाया, तुम ना मिलते तो क्या होता, तुम ना आते। कितनी बार अंधेरा छाया मेरे इस जीवन में सूझी, कितनी बार अंधेरा छाया मेरे इस जीवन में सूझी, तुमने आके ज्योति दिखाई, तुम ना आते तो क्या होता, निर्बिन नदिया बिन फूल बगिया, जीवन मेरा ऐसा होता तुम ना आते।
सत्यवचन बाइबिल अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी श्रोता मित्रों व भाई बहनों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु जी की कृपा से कुशल हैं और आज के बाइबिल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। स्वाइये इससे पूर्व के अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें, अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे। हम प्रार्थना करें। हे परम प्रधान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन पवित्र और मधुर क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यस्त जीवन में हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। दयालु प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आप इस वचन को पढ़ने, इसका अध्ययन करने, इस पर मनन करने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। जबकि हम इसकी रूपरेखा के विषय में ध्यान कर रहे हैं, प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को पढ़ने का ढंग सीख सकें, ताकि प्रभु हमें इससे लाभ हो और हमारे जीवन में आपका उद्देश्य पूरा हो सके। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और इसे हमारे लिए वास्तविक बना दें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी समस्या में है, प्रभु आप उनकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र बाइबल की रूपरेखा अर्थात मार्गदर्शिका से संबंधित बातों पर विचार कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने बाइबल अध्ययन से संबंधित 7 बातों पर विचार किया और वे 7 बातें इस प्रकार से हैं। पहली बात, प्रार्थना के साथ हम बाइबल अध्ययन प्रारंभ करें। दूसरी बात है, हम पवित्र बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तीसरी बात है, हम पवित्र बाइबल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। पढ़ना और अध्ययन करना दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। सो हम पवित्र बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर उसका अध्ययन करें। चौथी बात है, हम पवित्र बाइबल पर ध्यान चिंतन करें, मनन करें। पांचवी बात है कि हम दूसरों के लेखों को भी पढ़ें कि दूसरे व्यक्तियों ने, विद्वानों ने इस विषय पर क्या लिखा है। और छठी बात है, जो कुछ हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, जिस पर हमने ध्यान चिंतन किया है, उसका पालन करें। अर्थात हम पवित्र बाइबल का पालन करें, उसके अनुसार आचरण करें। और सातवीं बात है कि हम पवित्र बाइबल को दूसरों तक पहुंचा दें। तो इस प्रकार से बाइबल अध्ययन के लिए ये 7 बातें महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इस प्रकार से पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम निश्चित रूप से इससे लाभ उठाएंगे और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में अवश्य पूरा होगा। पिछले कार्यक्रम में हमने सीखा कि हमें किस प्रकार बाइबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका भक्तिपूर्ण रूप से इस पर ध्यान करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, इसका अध्ययन करना है। और जब हम भक्तिपूर्ण ढंग से बाइबल को पढ़ते हैं तो अवश्य है कि हम इसके लिए एक उचित समय निर्धारित करें, एक अच्छा समय निकालें ताकि हम इस पर ध्यान कर सकें, मनन कर सकें और इससे कुछ प्राप्त कर सकें। यदि बाइबल अध्ययन में आपने कुछ प्राप्त नहीं किया तो आपका बाइबल अध्ययन व्यर्थ है। तो जब आप भक्तिपूर्ण बाइबल अध्ययन करते हैं तो इसके लिए एक अच्छा समय निर्धारित करें ताकि आप अधिक से अधिक इससे लाभ उठा सकें। जिस प्रकार से आप सांसारिक पुस्तकें पढ़ते हैं, आप उन्हें लापरवाही से नहीं पढ़ते। आप अंगणित की पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक और अन्य पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। उसी प्रकार से आपको पवित्र बाइबल को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए आत्मिक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। दूसरे शब्दों में ये आपकी आत्मा का एकमात्र भोजन है। इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि आपको पवित्र बाइबल को पढ़ना ही चाहिए। आपको इसका पठन पाठन करना है, क्योंकि इसमें वे बातें हैं जो संसार की अन्य पुस्तकों में नहीं है। आपको ये वास्तविक ज्ञान से परिपूर्ण करती है और विशेष रूप से यह आपके उद्धार को आपके सामने खोल कर रखती है कि आप किस प्रकार से परमेश्वर की मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको कोई नया नियम नहीं बताना चाहता, कोई नया ढंग आपको नहीं देना चाहता, वरन आपको इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आप बाइबल पर ध्यान करें, भक्तिपूर्ण ढंग से बाइबल अध्ययन करें और इस पर ध्यान चिंतन करें। आज भी हम इसी विषय को लेंगे, अर्थात आज भी हम भक्तिपूर्ण बाइबल अध्ययन पर विचार करेंगे। अब यदि मैं आपसे ये कह दूं कि मैं भक्तिपूर्ण बाइबल पाठ को प्रोत्साहित नहीं करता हूं, तो आपको अवश्य बुरा लगेगा, आपको ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि वे लोग जो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ ईमानदारी से प्रतिदिन भक्तिपूर्ण बाइबल पाठ करते हैं, बाइबल की महान सच्चाइयों और भेदों से अनभिज्ञ रहते हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि एक बार मुझे एक परिवार के साथ ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ। वह एक अच्छा मसीही परिवार था। प्रतिदिन प्रातःकाल में वहां नाश्ते की मेज पर बैठकर भक्तिपूर्ण बाइबल पाठ होता था। मैं कई दिन से एक बात का अनुभव कर रहा था, नाश्ते में प्रतिदिन देरी हो जाती थी, जैसे कि बहुधा सभी परिवारों में ऐसा होता है। उनके दो बालक थे, जॉनी और सारा, जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे। स्कूल जाने की जल्दी में रहते थे और आप जानते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं और वो कितनी जल्दी में रहते हैं। तो ये दोनों बच्चे स्कूल जाने की जल्दी में रहते थे। पिताजी की भी ऐसी ही समस्या थी। बच्चों को नहीं मालूम कि उन्होंने क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, किंतु वे पढ़ते जरूर थे। पिताजी ने भी एक या दो पदों को पढ़ा और अपना छोटा सूटकेस उठाकर नौकरी पर भाग पड़े। रह गई माताजी, वह खाने के बर्तनों में उलझी पड़ी हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या पढ़ा गया। मित्रवर, मैंने उस दिन निर्णय लिया कि मैं अपने परिवार में कभी भी भक्तिपूर्ण बाइबल पाठ के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं करूंगा। मैंने सर्वदा अपने परिवार को उनके अपने ढंग से अपनी सुविधा के अनुसार बाइबल अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और इस प्रकार की भक्तिपूर्ण पढ़ाई से वास्तव में हमें लाभ होता है और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होता है। आवश्यक है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं उस पर मनन करें, ध्यान चिंतन करें। कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि मैं अपना भक्तिपूर्ण बाइबल पाठ संपूर्ण दिन के समाप्त होने पर रात्रि के समय करता हूं, क्या यह ठीक है? मित्र, आपका एक पैर तो पहले से बिछौने में है, क्योंकि आप दिन भर का कार्य करके थक चुके हैं और आपकी एक आंख नींद से बंद हो चुकी है और पवित्र बाइबल को पढ़ने की आप तैयारी में हैं। और जब तक आप दो चार पंक्तियां पढ़ते हैं, आप घर्राटे लेने लगते हैं। मित्रवर, क्या आप अंकगणित की पुस्तक को, साहित्य की पुस्तक को इस प्रकार पढ़ सकते हैं, विज्ञान की पुस्तक को इस प्रकार पढ़कर कुछ प्राप्त कर सकते हैं? क्या इस ढंग से आप कुछ सीख सकते हैं? और इसका उत्तर है कुछ भी नहीं। मित्र, उसी प्रकार आप पवित्र बाइबल को भी नहीं पढ़ सकते, उससे भी इस ढंग से आप कुछ नहीं सीख सकते। मेरे मित्र, आपको पवित्र बाइबल का अध्ययन करना है, यह आपकी आवश्यकता है, इसे आपको अवश्य पूरा करना है। इसे आपको उस समय में पढ़ना चाहिए जब आप इसे समय दे सकें, और यदि आपको समय नहीं मिलता है तो आप इसके लिए समय निकालिए। आप बाइबल अध्ययन के लिए एक या आधे घंटे का समय अवश्य निकालिए। मैं बाइबल अध्ययन के विषय में किसी प्रकार का नियम नहीं बनाना चाहता, केवल ये आग्रह करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत बाइबल पाठ और अध्ययन अवश्य करना चाहिए। युवक और युवतियों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपनी बाइबल को पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें सबके साथ भक्तिपूर्ण बाइबल करना चाहिए। यह अच्छा है, किंतु इसके द्वारा आप 20 वर्षों में भी एक बुद्धिमान बाइबल छात्र नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक अच्छे बाइबल विद्यार्थी बनने के लिए अवश्य है कि आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से बाइबल अध्ययन करें, स्वयं जानकारी प्राप्त करें, स्वयं परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ें। महान प्रचारक श्री जॉन वेस्ली के लिए ये बात प्रसिद्ध है कि वह एक पुस्तक के व्यक्ति थे, अर्थात वह केवल पवित्र बाइबल को पढ़ा करते थे। किंतु ये कैसे हुआ? मित्रवर, वह प्रातःकाल 4 बजे उठकर 5 भिन्न भिन्न भाषाओं में बाइबल पाठ किया करते थे। वास्तव में वह पवित्र बाइबल का अध्ययन किया करते थे। प्रिय मित्र, मुझे और आपको पवित्र बाइबल के अध्ययन की आवश्यकता है। यह हमारी आत्मिक आवश्यकता है, यह हमारी मानसिक आध्यात्मिक आवश्यकता है। हमें बाइबल पवित्र शास्त्र के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। बाइबल पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर और परमेश्वर के द्वारा मानव जाति का उद्धार, इसका ज्ञान कराती है। तब हमारा 5वां विषय है पवित्र बाइबल पर ध्यान चिंतन करना। मित्र, एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को करने के लिए सौंपा। परमेश्वर का वचन हर समय इसराइल की संतान की आंखों के सामने रहता था और इसलिए वे उस पर ध्यान कर सकते थे, जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 6 अध्याय के 6 से 9 पदों से प्रकट होता है। इन पदों में इस प्रकार से लिखा है, आज मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू उनको यत्न पूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना तथा अपने घर में बैठे मार्ग पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। तू उनको अपने हाथ पर चिन्ह स्वरूप बांधना तथा वे तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। तू उनको अपने घर के चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। तो यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने अपनी प्रजा इसराइल को ऐसी आज्ञा दी कि वे इस प्रकार से परमेश्वर के वचन पर, उसकी व्यवस्था पर ध्यान रखें। अब यहां अत्यंत आश्चर्यजनक, चौंका देने वाला कथन प्रभु की ओर से सुनाई देता है। प्रभु जी ने उनसे कहा कि तुम अपने घर के दरवाजों की दोनों चौखटों पर मेरे वचन को लिखो। दूसरे शब्दों में, जिधर भी वह देखें उन्हें परमेश्वर का वचन दिखाई दे। यह बिल्कुल विज्ञापन के बोर्ड के समान है। आज आप किसी महानगर की सड़क पर निकल जाएं, तो आप शराब तथा सिगरेट तथा कामुकता जगाने वाले विज्ञापनों को देखे बिना आगे नहीं चल सकते। कई बार ये पोस्टर्स एक दूसरे से टकराने का कारण भी बन जाते हैं। जब आप स्वयं समझ सकते हैं कि लोग शराब क्यों पीते हैं, वे सिगरेट क्यों पीते हैं, वे पराये शरीर के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं हर समय उनकी आंखों के सामने रहती हैं। वे हर समय, हर चौराहे पर, हर मोड़ पर इन वस्तुओं को देखते हैं, इनके विज्ञापन देखते हैं। प्रभु परमेश्वर मनुष्य के दुर्बल स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। वे हमें जानते हैं और इसलिए उन्होंने अपने प्रेम करने वाले लोगों से कहा कि वे अपनी आंखों के सामने सदैव परमेश्वर की व्यवस्था के वचन को रखें, जिससे कि वे जिस ओर भी देखें परमेश्वर के वचन पर उनकी दृष्टि पड़े और वे पाप से बचे रहें। हृदय और मस्तिष्क पर सबसे अधिक और गहरा प्रभाव आंखों का पड़ता है। आदि माता हव्वा ने फल पर दृष्टि डाली, उसे देखा और तत्पश्चात हृदय और मस्तिष्क दोनों क्रियाशील हो गए। और इसके पश्चात क्या हुआ? मित्रवर, पाप करने के लिए आज भी यही नियम लागू होता है, वह चाहे आप हों या मैं या हमसे पहले के लोग या हमारे पश्चात आने वाली पीढ़ी के लोग हों, सब इसी प्रकार से पाप करते हैं। पहले वे देखते हैं और फिर हृदय से चाहते हैं और तब मस्तिष्क और समस्त शरीर पाप करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन उन दरवाजों की आलंगों पर, उनके दरवाजों पर, और उनके वस्त्रों पर भी लिखा होता था। वे चलते समय परमेश्वर के वचन की चर्चा करते, वे बैठते समय परमेश्वर के वचन की चर्चा करते, और जब तक अपने बिछौने में पढ़कर सो नहीं जाते वे परमेश्वर के वचन की चर्चा करते थे। मित्रवर, परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि उसके वचन पर वे ध्यान चिंतन करें, मनन करें। अब परमेश्वर के वचन पर ध्यान चिंतन करने का वास्तविक अर्थ क्या है? पवित्र बाइबल में प्रथम भजन के प्रथम पद में अत्यंत रुचिकर कथन है। आइए हमारे साथ देखिए भजन संहिता 1 उसका पहला और दूसरा पद। यह इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। ध्यान दें, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। मित्रवर, ध्यान चिंतन करने का क्या अर्थ है? ध्यान चिंतन का अर्थ है रोमंथन करना या ध्यान मग्न होना, मस्तिष्क में लाना, उस पर बार बार विचार करना। यह होता ध्यान चिंतन। रोमंथन वही है जो एक गाय करती है। आपने कभी गाय को देखा है? जब वह बैठकर जो उसने खाया है उसकी जुगाली करती है। क्या आपने ऐसी अवस्था में किसी गाय पर ध्यान दिया है? मित्रवर, पिलखन के पेड़ के नीचे बैठी किसी गाय पर जरा दृष्टि डालिए, उसे ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि ये बूढ़ी गाय प्रातःकाल जंगल गई थी। वहां उसने ताजी ताजी ओस से भीगी घास पेट भर के चर ली, और जब सूर्य ऊपर उठने लगा, मौसम गर्म होने लगा, तो ये गाय किसी पेड़ की छांव में बैठ गई। आप उसे वहां कुछ चबाते हुए देखते हैं। नहीं मित्र, ये पान नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे कि ये संसार की क्या वस्तु चबा रही है, और वो बड़े ध्यान पूर्वक आंख बंद करके कुछ चबाती है। वह एक या दो घंटे ऐसे ही चबाती रहती है। मित्र, वह ध्यान चिंतन रोमंथन कर रही है। वो उस घास को जो उसने भोर के समय खाई थी, उसे अपने पेट के एक कक्ष से निकालकर दूसरे कक्ष में स्थानांतरित कर रही है। प्रिय मित्र, हमें परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा ही करना है। हमें परमेश्वर के वचन को लेकर पढ़ना है, इस पर बार बार विचार करना है, इस पर पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर इस पर ध्यान चिंतन करना है, और तब हम इसमें से जीवनदायक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसे रोमंथन की आवश्यकता है, इस पर ध्यान करने की आवश्यकता है। एक पद या अनुच्छेद को लेकर घंटों ध्यान करना एक अनोखा अनुभव है, ठीक वैसा ही जैसा नाश्ते और रात्रि के भोजन के आनंद के अंतर को हम महसूस कर सकते हैं। कुछ श्रोता भाई बहनों के पत्र हमको प्राप्त होते हैं। वे बताते हैं कि पत्नी ने घर पर रेडियो कार्यक्रम सुना और पति ने अपने काम पर कार्यक्रम को सुना, तब शाम के भोजन के समय वे बैठकर उस पवित्र वचन के अनुच्छेद पर विचार विमर्श करते हैं जो उस दिन रेडियो पर लिया गया था, जिसके विषय में रेडियो पर चर्चा की गई थी। मेरे मित्र, ये ध्यान चिंतन है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, किंतु पढ़ने के पश्चात हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा। उससे हमें कोई लाभ नहीं, किंतु जब हम पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, अब वो दिन भर हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में रहता है, तभी हम उससे वास्तविक लाभ उठाते हैं। ये ध्यान चिंतन है। कुछ मसीही परिवार के लोग रविवार या आराधना के पश्चात भी अपने घर पर बैठकर परिवार के साथ उस अनुच्छेद पर विचार विमर्श करते हैं जो उस दिन प्रचारक या पास्टर के द्वारा पढ़ा गया था। मित्र, रेल यात्रा के समय, कार में बैठे समय, बैलगाड़ी में बैठे समय पवित्र बाइबल के किसी अनुच्छेद पर ध्यान करना वास्तव में एक अत्यंत सुंदर अनुभव है। ये सब कुछ ध्यान चिंतन ही है, मनन है। आप में से कितने भाई बहन ऐसे हैं जो अपने भक्तिपूर्ण समय अर्थात डिवोशन के समय, पढ़े गए अनुच्छेद पर दोबारा दिन के समय में ध्यान करते हैं? अधिकांश लोग इसे पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। सच तो यह है कि इस वर्तमान आधुनिक समाज में ध्यान चिंतन एक खोई हुई कला है। व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वो किसी बात पर ध्यान चिंतन कर सके, किंतु ध्यान चिंतन एक सुंदर कला है, महत्वपूर्ण कला है। अनेक परिवारों में दूरदर्शन ने ध्यान चिंतन के समय को पूर्णता एक ओर सिमेट दिया है और इसलिए अनेक परिवारों का आत्मिक जीवन ठंडा पड़ गया है, उनकी आत्मिक उन्नति ठहर गई है, लोगों में से परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम समाप्त हो गया है। कुछ लोग तो जानबूझकर परमेश्वर के वचन से दूर रहना चाहते हैं। ये संकेत करता है उनके जीवन के गुप्त पापों की ओर। मित्रवर, हमें उस थुपियावासी खोजे को स्मरण रखना चाहिए। वह यात्रा पर था और परमेश्वर के वचन पर ध्यान चिंतन कर रहा था। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस नामक शिष्य को वहां भेजा और उसने उस इथोपियाई खोजे की सहायता की और वचन को समझाया। उसने उसके सामने एक नए संसार को खोल दिया। उसे प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त हुआ। मित्र, परंपरा बताती है कि जब वह अपने घर वापस गया तो उसने इथोपिया में एक कलीसिया की स्थापना की। फिर भी इससे रुचिकर बात यह है कि वह आनंद मनाता हुआ अपने घर वापस गया। मित्र, हमें यह स्मरण रखना है कि वह परमेश्वर के वचन पर ध्यान चिंतन कर रहा था। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम सत्य वचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।